यशाया अध्याय 26, यशाया की पुस्तक अध्याय 26 खोलें। अध्याय 26 अध्याय 25 के साथ ही चल रहा है, क्योंकि वो फिर कहता है, यशाया अध्याय 26 पद 1, उस समय, किस समय? उस समय जिस समय अध्याय 25 की भविष्यवाणियां पूरी होंगी। कौन सी है वे भविष्यवाणियां और कौन से हैं वे दिन जिनका उसने अध्याय 25 में उल्लेख किया था? देखिए पद 8, यशाया अध्याय 25 पद 8 और 9, वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबके मुख पर से आंसुओं को पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने कहा है। और उस समय ये कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वो हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। अतः ये वो समय है जब यीशु पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। उस समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मत्ती अध्याय 6 पद 10, तेरा राज्य आए। तो ये उस समय का उल्लेख है जब उसका राज्य पृथ्वी पर स्थापित किया जाएगा। यशाया अध्याय 26 पद 1 से लेकर 4 तक, उस समय यहूदा देश में ये गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वो उसकी शहरपना और गढ़ को नियुक्त करता है। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। धर्म शास्त्र के ये पद मन भावन है। मुझे ये प्रतिज्ञाएं बहुत अच्छी लगती है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। नए नियम में पत्रस उस शांति के बारे में कहता है जो मनुष्य के परे है। संसार इस शांति को नहीं समझ सकता, शांति जो यीशु हमें देता है। यीशु ने कहा, यूहन्ना अध्याय 14 पद 27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। बाइबल के अनुसार धार्मिकता का परिणाम है शांति। ये वो सद्गुण है जो हम मसीही विश्वासियों को अपनाना है। हमारे मन और जीवन में हमें परमेश्वर की ये शांति स्थापित करनी है। परमेश्वर की शांति पाने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले हमें परमेश्वर के साथ शांति स्थापित करनी है। ये कैसे संभव होगा? ये केवल मसीह यीशु के बलिदान के द्वारा ही संभव हो सकता है। धर्म शास्त्र कहता है, कुलुसियों पहला अध्याय 20 पद, मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया उसके द्वारा ईश्वर ने शांति स्थापित की। उसने अपना लहू बहाने के द्वारा हमारे पापों की हमें क्षमा दिलाई है और इस प्रकार हमारे लिए शांति का आधार स्थापित किया है। अतः ये प्रथम वरन आधारभूत है कि परमेश्वर के साथ हमारी शांति स्थापित हो, अर्थात परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन न करें, वरन उसके अधीन रहें, परमेश्वर से दूर न भागे परंतु समर्पण करें। और जब आप आत्मसमर्पण करके मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं तब परमेश्वर के साथ आपकी शांति स्थापित हो जाती है। ये बड़े दुख की बात है कि अनेक मसीही विश्वासियों को यीशु द्वारा स्थापित परमेश्वर की शांति प्राप्त है, परंतु वे परमेश्वर की शांति को अंतर्ग्रहण करके उस अनुभव को प्राप्त नहीं कर पाए हैं जो उनके मन, मस्तिष्क और जीवन को मसीह में स्थिर रखता है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि आपको परमेश्वर के साथ शांति स्थापित करने से अधिक कुछ पाना है। ये महत्वपूर्ण है कि आप उस शांति को अनुभव करें। उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां अव्यवस्था, अशांति और संघर्ष है। यहां रहते हुए मैं अपने मन में परमेश्वर की पूर्ण शांति का अनुभव कैसे कर सकता हूं, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं। आप संसार और उसकी वस्तुओं को देखते हैं, उनके पीछे जाते हैं। आप परमेश्वर की शांति का अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते। आपको इन प्रलोभनों से दृष्टि हटाकर दूसरी ओर देखना होगा। आपको इस संसार के पागलपन से दृष्टि हटाकर परमेश्वर की ओर देखना है। अपने मन को उसमें दृढ़ किए रहो। कितनी बार परमेश्वर को मेरे मन को अपनी ओर फेरना होता है। मैं परेशान होने लगता हूं और अशांति के कारण उत्तेजित हो जाता हूं। देखो, वे क्या कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं इसे होने नहीं दूंगा। प्रभु मुझसे कहता है, ठहरो, यहां का स्वामी कौन है? प्रभु जी, आप ही तो है। तब तू क्यों परेशान हो रहा है? पता नहीं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि परेशान होना मुझे अच्छा लगता है। परंतु आप इन्हें अनदेखा करना सीखें। अपने विचारों को यीशु की आज्ञाकारिता की बंधुआई में रख दे। उसकी आज्ञाकारिता में रहें। परमेश्वर स्वयं आपको बार बार रोकेगा। आप किसी बात पर परेशान होने लगेंगे तो परमेश्वर आपको तुरंत रोककर कहेगा, एक पल रुक, मैं सिंहासन पर बैठा हूं, मैं नियंत्रण करता हूं। और जिस पल आपका मन परमेश्वर की ओर फिरता है, उसी पल मसीह की शांति आपके मन में और जीवन में व्याप्त होने लगती है। ओह, ये ऐसा मन भावन अनुभव है, परमेश्वर की शांति, पूर्ण शांति, सिद्ध शांति, क्योंकि मेरा मन परमेश्वर पर रुक गया है। मैं तो केवल ये जानता हूं कि वो सब संभाल लेगा। प्रभु मुझे बार बार याद दिलाता है कि ये उसकी कलीसिया है। समस्याएं तो आती है। मैं सोचने लगता हूं, ओह, हम इसके बारे में क्या करेंगे, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। तब परमेश्वर मुझसे पूछता है, ये किसकी कलीसिया है? ये आपकी कलीसिया है प्रभु। वो कहता है, तो फिर क्यों परेशान होता है? इसका प्रबंध मुझे करने दे, ये मेरी कलीसिया है। चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, उसकी कलीसिया का पास्टर होना कितना आसान है। यदि मुझे अपनी कलीसिया की देखरेख करना हो तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, हर काम असंभव हो जाएगा। ये प्रभु की कलीसिया है। जब तक मुझे ये ध्यान रहता है तो मैं ठीक रहता हूं, और जब मैं इस बात को भूल जाता हूं तब घबराने लगता हूं। परमेश्वर तुरंत मुझे याद दिलाता है, ये किसकी कलीसिया है। हमें ये सदैव ध्यान रखना है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। ये उसकी सेवकाई है, ये प्रभु की कलीसिया है, ये उसकी सेवकाई है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है, परमेश्वर पर सर्वदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। यशाया अध्याय 26 पद 5 से लेकर 9 तक। वो ऊंचे पद वालों को झुका देता, जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वो नीचे कर देता, वो उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है। वो पांवों से वरन दरिद्रों के पैरों से रौंदा जाएगा। धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोते आए हैं। तेरे नाम के स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। रात के समय में जी से तेरी लालसा करता हूं। मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। यहां वो परमेश्वर के धन के विषय में चर्चा कर रहा है। वो प्रभु के राज्य के युग की बाट जो रहा है, जो मसीह की महिमा का दिन होगा। उस समय हम परम शांति का अनुभव करेंगे, परंतु प्रभु का दिन आने से पूर्व न्याय का दिन होगा। पृथ्वी पर परमेश्वर का न्याय, जब पृथ्वी पर परमेश्वर के न्याय के काम प्रकट होंगे, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखेंगे। परमेश्वर ऊंचे पद वाले को गिरा देता है, इसलिए उसने कह दिया। यशाया अध्याय 26 पद 10। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए, इसमें ये याचना नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि यदि आप दुष्ट का पक्ष भी ले, यशाया अध्याय 26 पद 10, तो भी वो धर्म को न सीखेगा। दूसरे शब्दों में ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों का विकास अच्छे समय में उतना अधिक नहीं होता है जितना कि बुरे समय में होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य या देश आशीष पाने के बाद परमेश्वर को भूल जाते हैं, वे परमेश्वर को पुकारते ही नहीं। जब बुरा समय आने लगता है तब वे परमेश्वर को पुकारते हैं, तब वे परमेश्वर की ओर फिरते हैं। अपनी सांसारिक समृद्धि पर विश्वास रखना कितना आसान होता है। किसी स्थिर और समृद्ध राष्ट्र को देखकर ये कहना, देखो हमारे देश को मुक्त व्यापार ने कैसा आशीषित किया है। परमेश्वर की आशीषों का श्रेय सरकार की नीतियों को देना, ये कहना कितना आसान होता है। हमारा राष्ट्र सशक्त है, हमारा राष्ट्र सुदृढ़ है, हमारा राष्ट्र महान है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे सशक्त सुदृढ़ और महान बनाया है, ना कि किसी ऐसा तंत्र ने जो अन्य राष्ट्रों से उत्तम है। ये तानाशाही पर प्रजातंत्र की विजय नहीं है। यह हमारी भूल है कि हम मुक्त व्यापार या अन्य किसी कारण प्रशंसा में कहें, यही कारण है कि हमारा राष्ट्र सुदृढ़ है। दया के समय या आशीषों के समय दुष्ट जन परमेश्वर के विषय में सोचता ही नहीं है, वो परमेश्वर की ओर फिरता ही नहीं है। परंतु बुराई के समय है, जब परमेश्वर का न्याय पृथ्वी पर आता है, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। अतः ध्यान रखो कि ये पद, दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए, ये प्रार्थना नहीं है। ये उस पद के जैसा जिसमें लिखा है, छड़ी को त्याग और संतान को बिगाड़। मेरे बेटे ने सोचा कि ये एक आज्ञा है, और जब मैंने उस पर छड़ी का प्रयोग किया तब वो बोल पड़ा, धर्मशास्त्र कहता है छड़ी को त्याग और संतान को बिगाड़। ये आज्ञा नहीं है, ये एक मुहावरा है। ये आपको समझा रहा है कि यदि आप छड़ी का प्रयोग नहीं करते हैं तो उसका परिणाम ये होगा कि आपकी संतान पथ भ्रष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार ये भी एक अभिव्यक्ति है, यदि दुष्ट पर दया की भी जाए तो वो धर्म को नहीं सीखेगा। यशाया अध्याय 26 पद 10। धर्म राज्य में भी वो कुटिलता करेगा और यहोवा का महात्मय उसे सूझना पड़ेगा। वो परमेश्वर के महात्मय अर्थात उसकी गरिमा को नहीं देखेगा, वो धर्म का पालन नहीं करेगा। यशाया अध्याय 26 पद 11 से लेकर 13 तक। हे यहोवा, तेरा हाथ बड़ा हुआ है पर वे नहीं देखते, परंतु वे जानेंगे कि तुझे प्रजा के लिए कैसी जलन है और लज्जाएंगे। तेरे बैरी आग से भस्म होंगे। हे यहोवा, तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। हमने जो कुछ किया है उसे तू ही ने हमारे लिए किया है। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम को गुण अनुवाद करेंगे। इसराइल परमेश्वर से उसके उस दंड के विषय में शिकायत कर रहा है जो परमेश्वर ने उनके राष्ट्र को दिया। परमेश्वर ने उन्हें उचित राह सिखाया। समृद्धि के दिनों में वे परमेश्वर को भूल गए थे, उन्होंने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया था और परिणाम स्वरूप वे दुश्मनों से घिर गए थे। अब वे एक होकर कह रहे थे, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे। उन पर अन्य राष्ट्रों ने राज किया था, उन पर अन्य शक्तियां प्रभुता करती थी। अतः अब वे कहते हैं, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम को गुण अनुवाद करेंगे। यशाया अध्याय 26 पद 14। वे जो हम पर कभी शासन करते थे मर गए हैं, फिर कभी जीवित नहीं होंगे। उनको मरे बहुत दिन हुए, वे फिर नहीं उठने के। तूने उसका विचार करके उनको ऐसा नाश किया कि वे फिर स्मरण में ना आएंगे। अर्थात वे राष्ट्र जो इसराइल पर प्रभुता करते थे। कुछ लोग ऐसा भी है जो इस पद के द्वारा दुष्टों के नाश की शिक्षा देते हैं कि परमेश्वर अंत में उनका नाश कर देगा, परंतु कुछ पद इससे अलग शिक्षा देते हैं, और विशेष करके वे जो सुसमाचार में विहित है और यीशु द्वारा अधोलोक के संदर्भ में कहे गए हैं। यशाया अध्याय 26 पद 15 और 16। परंतु तूने जाति को बढ़ाया, हे यहोवा, तूने जाति को बढ़ाया है। तूने अपनी महिमा दिखाई है और उस देश के सब सिवानों को तूने बढ़ाया है। हे यहोवा, दुख में वे तुझे स्मरण करते हैं। जब तू उन्हें ताड़ना देता था तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात तुझ पर प्रकट करते थे। जब परमेश्वर ने उनकी ताड़ना की तब उन्होंने यहोवा की ओर अपने मन फिराए और प्रार्थना की। यशाया अध्याय 26 पद 17 और 18। जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय एंठती और पीड़ा के कारण चिल्ला उठती है, हम लोग भी हे यहोवा तेरे सामने वैसे ही हो गए हैं। हम भी गर्भवती हुए, हम भी एंठे, हमने मानो वायु ही को जन्म दिया। हमने देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया और ना जगत के रहने वाले उत्पन्न हुए। परमेश्वर उनसे कहता है, यशाया अध्याय 26 पद 19। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाकर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। इस पद को समझना कुछ कठिन है। अंग्रेजी संस्करण में इसे समझाने के लिए अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिनको हिंदी संस्करण में ज्यों का त्यों अनुवाद किया गया है, जैसे मरे हुओं के साथ लोग एक अतिरिक्त शब्द है। अपनी मृत्यु के बाद यीशु अधोलोक में उतरा था। प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 2 हमें यही बताता है। परंतु यीशु को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी, भजन संहिता 16 पद 10, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। जब यीशु मसीह से चिन्ह मांगा गया था, तब यीशु मसीह ने क्या कहा था? मती अध्याय 12 पद 40, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। प्रेरित पौलुस एफिसियों में कहता है, एफिसियों 4 अध्याय 8 और 9 पद, वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदवाई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। यीशु के पुनरुत्थान से पूर्व जब तक पाप की मजदूरी चुका नहीं दी गई थी, पुराने नियम के धर्मी जन मरणोपरांत स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाए थे। वे कब्र में ही प्रतीक्षा कर रहे थे। इसका एक उत्तम उदाहरण यीशु ने लूका के अध्याय 16 में दिया है, जहां एक धनवान व्यक्ति और लाजर की कहानी लिखी गई है। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था, और लाजर नाम एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्ग दूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है, और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। वे जो इस आशा में हैं कि मृत्युपरांत अवसर दिया जाएगा, उनके लिए ये एक सीधा और स्पष्ट कथन है। यीशु ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि मरने के बाद गड्ढे को पार करना संभव नहीं है। इस पर उसने कहा कि उसे फिर से भेज दिया जाए कि वो उसके भाइयों को बता दे कि वो स्थान कैसा भयानक स्थान है। इब्राहिम का उत्तर था, उनके पास मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता है। यदि वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं पर भरोसा नहीं रखते, तो कोई मृतकों में से लौटकर उनके पास जाएगा तब भी वे उसकी नहीं सुनेंगे। ये यीशु के शब्दों में अधोलोक या नरक का वर्णन है। यीशु मरणोपरांत अधोलोक में गया था। वहां उसने बंदी आत्माओं में प्रचार किया, परंतु यहां यशाया पुस्तक के 61 अध्याय में मसीह यीशु के संबंध एक भविष्यवाणी है। यशाया अध्याय 61 पद 1, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। वे जो कब्र में बंदी थे, उन्हें उसने स्वतंत्रता का संदेश सुनाया, और जब वो बाहर आया तब वो कैदियों को मुक्त कराकर साथ ले आया। वचन कहता है कि पुराने नियम के विश्वासी मर तो गए, पर उन्हें पुनरुत्थान की प्रतिज्ञा प्राप्त नहीं हुई। परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ अधिक उत्तम वस्तुएं रखी हुई थी, इसलिए हमसे अलग वे परिपूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाए। इब्राहिम तथा पुराने नियम के सब विश्वासी मरणोपरांत पापों की क्षमा की प्रतीक्षा करते रहे और स्वर्ग से वंचित रहे, क्योंकि उनको पापों की क्षमा प्राप्त हुई थी। यीशु के बलिदान द्वारा ही पापों की क्षमा आई। बछड़ों और बकरियों का लहू पापों की क्षमा नहीं, एक अस्थाई आवरण था। बलिदान तो केवल परमेश्वर के पाप मोचन कार्य की ओर विश्वास से देखने का साधन थे। सत्य तो यह है कि मसीह यीशु का लहू ही पापों की क्षमा के लिए आवश्यक था। अतः यीशु ने अपना लहू बहाकर सबके लिए पापों की क्षमा का प्रावधान किया कि वे परमेश्वर के निकट आ पाए, और वो सबसे पहले अधोलोक में गया कि पुराने नियम के उन विश्वासियों को ले आए जो परमेश्वर के मसीहा की प्रतीक्षा बड़े विश्वास से करते हुए मर गए थे। उसने परमेश्वर की मुक्ति और उद्धार का उनमें प्रचार किया, और जब उसका स्वर्गारोहण हुआ तब वो उन्हें अर्थात उन बंदियों को साथ ले गया। मती के अध्याय 27 में लिखा है, मती अध्याय 27 पद 52-53, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। मेरे विश्वास में ये विशेष पद इसी घटना की भविष्यवाणी है कि पुनरुत्थान के आरंभ में यीशु इन बंदी आत्माओं को मुक्ति दिलाकर अपने साथ ले गया। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। ये घटना यीशु के पुनरुत्थान के समय घटी थी। बाइबल बताती है, और यीशु ने कहा था, योहन्ना अध्याय 11 पद 26, जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। पौलुस ने कहा था, पहला कुरिन्थियों 15:51-52 पद, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही हम बदल जाएंगे, हमारा रूपांतरण हो जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 5:1 पद, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थाई है। अभी तो मैं इस पुराने डेरे में रह रहा हूं, मैं इससे थक चुका हूं। एक दिन मैं इस पुराने डेरे में से निकलकर भव्य परंतु चिरस्थाई घर में चला जाऊंगा। यीशु ने कहा, यूहन्ना 14 दूसरा पद, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। पौलुस यही तो कह रहा है कि हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं परंतु चिरस्थाई है। और कुरिन्थियों की पुस्तक में पौलुस कहता है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5:2, इसमें हम कहरते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। ये ध्यान रखिए कि बाइबल की शिक्षा के अनुसार वास्तविक मैं जो है वो देह नहीं है, वो आत्मा है। ये देह तो अस्थाई आवास है, ये मेरी आत्मा की अभिव्यक्तियों का माध्यम है। मैं तो एक नई देह की प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन है जो हाथों से बना हुआ अस्थाई घर नहीं परंतु चिरस्थाई है। दूसरा कुरिन्थियों 5:1-2 और 5:6-8, हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थाई है। इसमें कहरते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। पद 6, सो हम सदा डाडस बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। पद 8, इसलिए हम डाडस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। अतः उस महिमा के दिन जब मैं अपने डेरे में से निकलकर उस घर में चला जाऊंगा तब मैं हमेशा के लिए वहां रहूंगा। परमेश्वर के इस नए भवन देह जिसे दुख दर्द नहीं होगा, ना ही कमजोरी होगी, नींद की जरूरत नहीं पड़ेगी इत्यादि, इस देह के विषय में सोचकर ही मन व्याकुल हो जाता है कि मेरी नई देह कैसी होगी। पौलुस कहता है, तुम में से कोई कहे कि मृतक कैसे जिलाए जाते हैं और उनकी देह कैसी होगी, इसके संदर्भ में वो बीज से उगने वाले पौधे का उदाहरण देता है कि बोया गया बीज का अपनी एक देह थी परंतु उगते हुए पौधे को परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुरूप एक भिन्न देह प्रदान की। बीज चाहे गेहूं हो या अन्य कोई बीज, भूमि में गड़ी हुई देह वो देह नहीं होती जो निकलकर बाहर आती है। और पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों 15:52-44, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वो अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। मेरे लिए तो इस नए घर का विचार ही बड़े आनंद का कारण है। ये घर परमेश्वर मेरे लिए तैयार करवा रहा है, क्योंकि प्रभु की ये प्रतिज्ञा है कि वो आकर मुझे ले जाएगा कि जहां वो है वहां मैं भी रहूं। मैं इस देह को लेकर वहां नहीं जा सकता क्योंकि ये उस वातावरण के लिए नहीं बने हैं। मैं आपको सच बता दूं, मैं स्वयं नहीं चाहता कि इस शरीर को लेकर वहां रहूं, क्योंकि मैं सदा चश्मा पहने रहना नहीं चाहता। मुझे चश्मे से घृणा है। इस देह में बहुत सी बातें मुझे पसंद नहीं हैं, ये मत सोचिए कि मैं इस देह को निरादर कर रहा हूं, मैं इस शरीर को सराहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये शरीर दिया है। परमेश्वर ने मुझे बलवंत और स्वस्थ शरीर दिया है। मैं तो यहां तक आभारी हूं कि मैं बीमार भी बहुत कम रहता हूं, परंतु मैं अपने शरीर को नाश होता देख रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैं इसके विनाश को भी देख रहा हूं। मुझ में पहले जैसे बल और दम नहीं रहा, अब मैं वो नहीं हूं जो पहले था। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं कम से कम वैसा भी नहीं हूं जैसे लोग इस उम्र में हो जाते हैं। परमेश्वर की ओर से मुझे स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थाई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यशाया यीशु के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी कर रहा है कि वो अपने साथ बंदी आत्माओं को विभवशाली स्वर्गीय दृश्य में मुक्त कराकर ले जाएगा। इसकी हम प्रतीक्षा करते हैं। यशाया अध्याय 26 पद 20 और 21 बड़े रोचक पद है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात के हुओं को और अधिक ना छिपा रखेगी। ये निश्चय ही महाक्लेश की भविष्यवाणी है, यीशु के आगमन से पहले के 3.5 वर्षों की। ये वो समय होगा जो पृथ्वी मसीह विरोधी के अधिकार और नियंत्रण में होगी। दूसरे शब्दों में ये समय पृथ्वी पर परमेश्वर के क्रोध के भटकने का समय होगा, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है। परमेश्वर इस समय के संबंध में अपनी प्रजा से क्या कहता है, हे मेरे लोगों, आओ अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है। ये सत्य है कि कलीसिया इस दंड की भागी नहीं होगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है, 1 थिस्सलुनीकियों 5:9, परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया। अतः जब परमेश्वर पृथ्वी के निवासियों को दंड देने अपने स्थान से चला आता है, तब वो अपने लोगों से कहता है, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो। इसके 2 संभावित अर्थ हैं। एक तो यह कि परमेश्वर इसराइल के संबंध में कह रहा है, कोई कुछ कह नहीं सकता। दूसरा अर्थ तभी संभव हो सकता है जब ये माना जाए कि कलीसिया महाक्लेश से गुजरेगी, जो मेरे विचार में उचित अर्थ निर्धारण नहीं है। ये मात्र पूर्व कल्पना है। मैं ये मानता हूं कि प्रभु अपनी कलीसिया को क्लेश से पूर्व ही उठा लेगा, इससे पूर्व कि क्रोध पृथ्वी पर भड़के। मैं यहां इसे कलीसिया से संबंधित कर सकता हूं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य अध्याय 4:1 में लिखा है, तो देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरी के से शब्द से मेरे साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहां ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। अतः अपने आप को छिपा लो उस समय जब पृथ्वी पर परमेश्वर क्रोध उंडेलेगा, कलीसिया स्वर्ग में प्रभु के साथ होगी। ये अति संभव है, इसको अस्वीकार करना सही नहीं होगा। मैं इसे इसराइल के विषय में कह सकता हूं, मैं नहीं जानता इसका संदर्भ किससे है, ये दोनों के साथ ही संदर्भित हो सकता है, परंतु किसी भी तरह से ये दिलचस्प पद है कि महाक्लेश अधर्म के प्रति पृथ्वी के निवासियों के लिए परमेश्वर का दंड है। परमेश्वर ने मेरे अपराधों का दंड दिया है, उसने मेरे स्थान पर अपने पुत्र को दंड दिया है और मुझसे मिलाप किया है, तो अब वो मुझे फिर से दंड क्यों देगा? यशाया अध्याय 53:6। हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हमें से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। मेरे अधर्म का दंड मसीह ने भोग लिया, यही उद्धार और सुसमाचार है। अतः मेरे लिए अधर्म का दंड भोगना सुसमाचार के अनुरूप नहीं है। आपके अधर्म के दंड को यीशु ने उठा लिया, यही तो इस नाश हो रहे संसार के लिए शुभ संदेश है। अतः हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो। मुझे इससे बड़ी शांति मिलती है, मुझे इससे आनंद और सुख प्राप्त होता है। जिनके विचार में कलीसिया महाक्लेश से गुजरेगी, उन्हें बाइबल के इस पद से शांति, सुख और आनंद प्राप्त होगा।